नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। ऑनलाइन ऑर्डर लेकर खाना पहुंचाने वाली कंपनी जोमैटो लिमिटेड ने शुक्रवार को खानपान के रुझान बताने वाले एक आंकड़े विश्लेषण मंच की पेशकश की। इस मंच का मकसद रेस्टोरेंट भागीदारों को मूल्य, व्यंजन और स्थान को लेकर आंकड़ा आधारित नजरिया अपनाने में मदद करना है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि जोमैटो फूड ट्रेंड्स एक खुला मंच है जो आम जनता के लिए मुफ्त में उपलब्ध है और ये भारत के सैकड़ों शहरों में लाखों लेन देन के आंकड़ों का विश्लेषण करके एक नजरिया देगा। बयान में कहा गया कि रेस्टोरेंट भागीदार जिन जानकारियों का उपयोग अपनी रणनीतियां बना सकते हैं और अपनी सफलता को बढ़ाने के लिए आंकड़ा आधारित फैसले कर सकते हैं। कंपनी ने कहा, फैसले करने की दिशा में आंकड़ा आधारित नजरिया अपनाने से वर्तमान और नए रेस्टोरेंट भागीदार दोनों को मदद मिलेगी। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि 6 साल पहले लागू GST से न केवल नागरिकों पर कर का बोझ कम करने में मदद की है बल्कि देश में खपत को गति भी दी है। कुल मिलाकर इससे परिवारों को मासिक बिल कम करने में मदद मिली है। सरकार ने GST लागू होने से पहले और बाद में विभिन्न वस्तुओं पर कर दरों की तुलना करते हुए ये बात कही। उसने ये भी कहा कि GST प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने से लेकर निवेश को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने ट्विटर पर लिखा, GST के कार्यान्वयन ने करदाताओं के लिए कर कानून का पालन करना आसान बना दिया। ये बात इस तथ्य से पता चलती है कि GST के तहत पंजीकृत करदाताओं की संख्या 1 अप्रैल 2018 तक 1.03 करोड़ थी। ये बढ़कर 1 अप्रैल 2023 तक 1.36 करोड़ रुपए हो गई। वाणिज्य मंत्रालय ने बैंडेज और फर्स्ट एड बॉक्स के निर्यातकों को पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नवगठित चिकित्सा उपकरण निर्यात संवर्धन परिषद को अधिकृत किया है। विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यातकों को नीति के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। प्रमाण पत्र होने से निर्यातकों को सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क को लेकर लाभ प्राप्त करने में भी मदद मिलती है। प्रमाण पत्र निर्यात संवर्धन परिषद और जिन्स बोर्ड जारी करते हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि विदेश व्यापार नीति में पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर परिषद को शामिल किया गया। इन वस्तुओं में गर्म पानी की बोतलें, बर्फ की थैलियां, दस्ताने, सर्जिकल चिकित्सा उपयोग के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा वस्त्र, सर्जिकल गाउन और पर्दे, सिरिंज तथा स्टेथोस्कोप शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को बड़ी राहत मिली। पाकिस्तान सरकार और मुद्रा कोष 3 अरब डॉलर के बहुप्रतीक्षित समझौते पर पहुंच गए। इससे पाकिस्तान को वैश्विक झटकों से निपटने और अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने में मदद मिलेगी। ये समझौता कर्मचारियों के स्तर पर है, अतः ये मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक मंडल की मंजूरी पर निर्भर है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संकट से गुजर रही है। पिछले कई साल से तीव्र गिरावट की स्थिति है। इससे गरीब जनता पर अनियंत्रित महंगाई के रूप में दबाव आ गया, जिससे बड़ी संख्या में लोगों के लिए गुजारा करना लगभग असंभव हो गया। IMF के पाकिस्तान में मिशन प्रमुख नेथन पॉटर ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा, मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि IMF टीम ने पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ 9 महीने के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत 225 करोड़ SDR की राशि पर स्टाफ लेबल समझौता किया। ये राशि पाकिस्तान के मुद्रा कोष में कोटा का 111% है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय बैंक की नवीनतम डेटा प्रणाली CIMS पर पहले वाणिज्यिक बैंक अपने आंकड़े भेजना शुरू करेंगे और फिर शहरी सहकारी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी इसका हिस्सा बनेंगी। दास ने रिजर्व बैंक के मुख्यालय में आयोजित 17वीं सांख्यिकी दिवस संगोष्ठी में केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन करते हुए कहा कि RBI की अगली पीढ़ी वाली इस डेटा प्रणाली पर शुरुआती दौर में वाणिज्यिक बैंक सूचनाएं भेजना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे शहरी सहकारी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी इस प्रणाली पर अपने आंकड़े दर्ज कराने लगेंगे। RBI गवर्नर ने कहा कि CIMS के सक्रिय हो जाने के बाद जारी होने वाली साप्ताहिक रिपोर्ट खुद केंद्रीय बैंक के अपने परिचालन और बैंकिंग एवं वित्तीय बाजारों के घटनाक्रम पर केंद्रित है। इसके आंकड़े इस प्रणाली में 23 जून को समाप्त सप्ताह तक दर्ज किए गए थे। साख तय करने वाली फिच रेटिंग्स ने शुक्रवार को कहा कि भारत का मजबूत वृद्धि परिदृश्य देश की कंपनियों के लिए विदेशी बाजारों में नरमी की भरपाई करेगा, साथ ही कच्चे माल की लागत का दबाव कम होने से उन्हें लाभ मार्जिन बढ़ाने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि इस महीने की शुरुआत में फिच ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को पहले के 6% से बढ़ाकर 6.3% कर दिया। फिच ने कहा कि निरंतर आर्थिक वृद्धि सीमेंट और पेट्रोलियम उत्पाद की मांग को बढ़ाएगी। इस वर्ष अब तक जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वे महामारी पूर्व स्तर से ऊपर पहुंच गए हैं। बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खर्च से स्टील की मांग भी बढ़ेगी, रेटिंग एजेंसी ने एक बयान में कहा। भारत का मजबूत वृद्धि परिदृश्य देश की कंपनियों के लिए विदेशी बाजारों में नरमी की भरपाई करेगा, साथ ही कच्चे माल की लागत का दबाव कम होने से चालू वित्त वर्ष उनका लाभ मार्जिन 2.20% बढ़ने की उम्मीद है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।